ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारे कल्प में संगम योग सर्वश्रेष्ठ योग है, महान है, बेशक छोटा है, लेकिन प्राप्तियां और अनुभव अत्यधिक है। और ये संगम युग सब प्राप्ति कराने वाला है, 84 जन्मों का भी सारा बैंक खाता हम यहाँ ही जमा करते हैं। और सारे कल्प में जैसा बताया कि जिम्मेदारी निभाते निश्चिंत बेफिकर बादशाह, सतयुग में भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, कितनी महिमा है। श्री कृष्ण को भी महाराज धीराज कहा गया, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कहा गया, लेकिन एक निश्चिंत जीवन, जबकि वर्तमान समय दुनिया में कितनी अशांति है, कितनी कलह कलेश है और कितना भागा दौड़ी की जिंदगी है, ऐसे समय में जहां लोगों को शांति, खुशी, आनंद बहुत दूर दूर तक भी नजर नहीं आता, तो बाबा के बच्चे निश्चिंत कैसे बादशाह बने, बेफिकर बादशाह, जिसको बाबा कहते बेगमपुर के बादशाह। ये केवल संगम युग की बात है और उसका उदाहरण आदर्श हम सभी के अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा रहे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही हम लोगों के लिए एक उदाहरण बन के रहे। तो बाबा के जीवन में ऐसा नहीं है कि शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया तो बाबा के आगे कोई नीचे ऊंची बात नहीं आई या परीक्षाएं नहीं आई या समस्याएं नहीं आई, सब कुछ आया, लेकिन बाबा अटल रहे, अडोल रहे, निश्चिंत रहे, क्योंकि करण करावनहार कौन है, कौन चला रहा है, तो कौन करा रहा, कौन चला रहा और किसका कार्य है, जब ये निश्चय होता है तो करण करावनहार जाने हमारी केवल जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारियों को संपूर्ण रीति से, दिल व जान से, तन से, मन से, धन से, हर आज्ञा का पालन करते हुए, निभाते हुए, जब हम निभाना शुरू कर देते हैं तो ये कार्य परमात्मा का है, शिव बाबा का है, कि वो किस प्रकार से हमारी नाव को पार करता है। तो एक तो होता है निश्चय, जो निश्चय होंगे तो निश्चित भी होंगे कि जो भी हो रहा है ड्रामा के अंदर वो निश्चित है, और जब निश्चित है तो अवश्य संपूर्ण निश्चिंत होंगे, बेफिकर होंगे, जिम्मेदारी में बेफिकर नहीं लेकिन रिजल्ट में बेफिकर, क्या होगा, कैसे होगा, इसका उनको चिंतन नहीं चलेगा। तो एक बल, एक भरोसा। तो जब एक बल, एक भरोसा होता है तो बेफिकर होते हैं, परमात्मा को जो कराना है वो कराएंगे, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। गीता में भी है कि तू कर्म कर, कर्म के फल को इच्छा नहीं रखो, कर्म के फल का कभी भी संकल्प ना आए। तो कर्म करना है, फल के लिए इच्छा नहीं रखनी है, तब हम बेफिक्र बादशाह होंगे। और कई ऐसी बातें हैं जब हम शास्त्रों को देखते हैं या अपने पूर्व आदि देवी देवताओं के जीवन को भी देखें, तो उसमें दो विशेषताएं मिलती है, एक दृढ़ता, दूसरा धैर्य। जीवन में धैर्य कितना है, अधीर नहीं होना है। जैसे श्री रामचंद्र जी को देखें तो विचार करिए, जिस समय उनका राज तिलक हो रहा है, होने जा रहा है, उस समय उनको ये आज्ञा मिल गई कि वनवास जाओ। आप विचार करें, किसी का राज तिलक होने वाला हो और आज के जमाने में किसी को कह दिया जाए कि आपको 14 वर्ष वनवास में रहना है, उस समय मानसिक स्थिति क्या होगी और कितनी हलचल होगी। लेकिन उनके चेहरे पर निश्चिंतता, ये धैर्य है। उस धैर्यता से वो अपने कदम बढ़ाए, राजसी वस्त्र उतारे और पहने अपने गेरुआ कफनी और चल दिए। आगे जब बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं सामने आई, चाहे सीता जी का हरण दिखाया है, तब भी अधीरे नहीं हुए, बड़ी धैर्यता से। लंका पार जाना है, सागर पार करना है, पुल बनाना है, हर कार्य में अधीरता नहीं मिली है, धैर्यता का गुण था। और उस धैर्यता के गुण और परमात्मा का सहारा, इसलिए रामेश्वरम में स्थापना की। तो जब स्थापना किया तो एक शिव परमात्मा के बल से, तो कहा लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनो मोहि न भावा। तो एक बल, एक भरोसा, परमात्म शक्ति। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते, बच्चे अपने सौमान में रहो, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान की जब छत्र छाया है तो चिंता किस बात की, फिक्र किस बात का, अफसोस किस बात का। तो जब उसी तरह हम निश्चिंत रहेंगे तो बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर सकेंगे, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए भी। और बाबा के सामने बहुत बातें आई और बाबा भी यही कहते थे, बच्चे कभी भी आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। और परेशान भी तब होते हैं जब अपनी शान से परे होते हैं, तब परेशान होते हैं। तो हम अपनी शान में तभी रहेंगे जब सौमान में होंगे। ये सौमान भी देने वाला कौन है, उसकी याद में रहेंगे। तो अभी का जो योग है, याद है, तो जैसा समय है फैशनेबल, हमारा योग भी फैशनेबल है। आप कहेंगे वो कैसे, आजकल देखा जाए तो अधिकांश हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा को याद करते हैं या फरियाद करते हैं। हर कोई फरियाद करता है, अमृत वेले भी फरियाद रहती है। अगर सेवा के क्षेत्र में है तो भी फरियाद करेंगे, बाबा ये हमारा सेंटर फलीभूत हो जाए, सेवाएं बढ़ जाए, भाई बहन अच्छे निकल आए, तो भी फरियाद है। अगर परिवार में है तो फरियाद है। योग किसके लिए लगा रहे हैं, ये विघ्न टल जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, उसकी नौकरी बहुत अच्छी लग जाए, पति बीमार है, भाई बीमार है, वो ठीक हो जाए। तो जब हमारा योग याद का नहीं है, फरियाद का है, फरियाद वाला कभी निश्चिंत बेफिक्र बादशाह का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो हम फरियादी हैं, योगी नहीं है। बाबा की याद नहीं है, एक बल एक भरोसा। बाबा ने कहा बच्चे विघ्न कितने भी आए, हलचल कितने भी हो, लेकिन तुम्हारी नाव हिलेगी डूबेगी नहीं। इतना जब निश्चय हो, भरोसा हो, तो बेफिकर बादशाह होंगे। पतझड़ भी आता है, उस पतझड़ के बाद नए किले निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, फूल और फल होते हैं। हम थोड़ी सी बात में अधीरे हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हो गया, तो दिमाग में क्या, क्यों, कैसे का क्यों लग जाता है, और उस क्यों को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं एक बच्चा था, जब एरोप्लेन में सभी बैठे थे और जब ये उसमें आवाज आती है, कैप्टन कहता है कि अभी आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, मौसम अच्छा नहीं है, और सतर्क रहें। सब अपने अपने में सतर्क तो हुए लेकिन मन में हलचल है, और वहीं छोटा बच्चा बड़े मग्न होके खेल रहा। उससे पूछा क्यों तुमको डर नहीं लगता, बच्चे ने जवाब दिया नहीं। क्यों? क्योंकि इस जहाज का जो पायलट है वो मेरा पापा है, इसलिए मुझे डर नहीं है। तो जब हमको ये निश्चय है, भरोसा है कि हमारी भी जीवन नैया का पायलट कौन है, जीवन नैया को भव सागर से पार करने वाला कौन है, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला कौन है, हमारा रक्षक कौन है, हमारा साथी कौन है। भले हम गीत तो गाते हैं किस भगवान हमारा साथी है, लेकिन उस साथी का साथ का अनुभव कितना करते हैं, या उसके हाथ बरद हस्त का अनुभव कितना करते हैं। तो बाबा तो हमारा साथी है, पर हम कितना साथ निभाते हैं। तो एक तरफ का प्यार तो नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, जैसा मैंने बाबा के लाइफ में देखा। हमेशा बाबा कहते थे बच्चे निश्चिंत रहो, बाबा का यज्ञ है, विघ्न बहुत आएंगे, आएंगे और जाएंगे। समस्या आती है जाने के लिए, परेशानी आती है जाने के लिए, टिकने के लिए नहीं, रुकने के लिए नहीं। तो एक बार की बात आपको बताते हैं कि जब अपने यज्ञ में शुरू शुरू में इतनी सारी संपन्नता नहीं थी, अपनी गौएं थी, बाबा ने पांडव भवन में गौशाला बनाया था, और उस गौशाला में जो मेरा छोटा भाई उस समय 12 साल का था, बाबा ने उसको बोला कि बच्चों तुम इन गायों के ऊपर जो ग्वाला है उसकी तुम सुपरविजन करो कि वो गाय को ठीक से कैसे खिलाता पिलाता ठीक रखता है। कुछ दिन के बाद दो गाय और आ गई बाबा के घर में, तो आसपास के लोगों ने उस ग्वाले का दिमाग खराब किया, कहा कि देखो बाबा के पास इतना धन आ गया है कि दो गाय और आ गई है, और तुमको मास का जो तनख्वाह मिलती है वो 50 रुपया मिलती है, अभी तुम अपना बढ़ाओ, 100 रुपया करा लो। उसने अपनी बात सामने रखी तो दादा विश्व किशोर जी ने कहा भाई एकदम से डबल कैसे करेंगे, आप 20 ले लो, 25 तक ले लो, 75 ले लो। तुम वो नहीं माना, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो अपनी इनको गरज है, ये 100 रुपया देंगे, कौन करेगा गाय की सेवा, कोई है नहीं। तो जब उसको पता चला कि मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तो उसी छोटे भाई को वो बोल के चला गया कि बाबा से कह देना कल से मैं नहीं आऊंगा। सोचा अपने आप मुझे बुलाएंगे, और उसने जाके बोला बाबा ग्वाले ने मना कर दिया, कल से नहीं आएगा। इतनी गैया दूध निकालना है, उनका चारा पानी सब करना है, कोई करने वाला नहीं है। तो लेकिन बाबा को जरा भी फिक्र नहीं क्या होगा कैसे होगा, और बहुत प्यार से कहा बच्चू तुमने देखा ना कैसे गायों की पालना होती है। बोला जी बाबा। कहा बस ऐसे ही तुम गायों की पालना करना। अब सवेरे उसने किया, फिर बाबा ने बुलाया कि कैसे किया, तो उसने कहा बाबा जो गाय दूध देती है उसको चूनी ज्यादा दिया, जो कम देती उसको कम दिया, और जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसको बिल्कुल नहीं दिया, भूसा दिया है। तो बाबा मुस्कुराए, कहा नहीं देखो जो नहीं दे रही वो भविष्य में देगी, अगर तुम उसको दाना नहीं देंगे तो कमजोर हो जाएगी, तो जब ये गाय दूध देना बंद करेगी तो आगे कहाँ से दूध आएगा, तो इसको तंदुरुस्त रखो। ठीक, दे दिया। फिर बाबा ने बुलाया कि बच्चू तुम दूध निकाल लेंगे, अब विचार करो छोटा बच्चा और हाथ से निकालना कैसे निकालेगा, पर आज्ञा का पालन जी बाबा। ये नहीं कहा नहीं बाबा हम कैसे निकाल पाएंगे, तो जब जी बाबा किया तो बाबा ने हिम्मत दी, शक्ति दी, और सारी गायों का एक बाल्टी दूध निकाला, और गाय के बछड़ों की तो मौज आ गई, उनको खूब दूध पीने को मिला, निकाल ही नहीं पाया। जब एक बाल्टी दूध लेके आया तो बाबा ने इतनी महिमा की, इतनी महिमा की, और मम्मा को अंदर से बुला लिया कि मम्मा देखो तो सही एक बाल्टी दूध लाया है, कमाल है इस बच्चे की, एक बाल्टी लाया है। अब इतना सुनना ही एक वरदान हो गया बाबा का बोलना। ये नहीं सोचा कि कहां से होगा। दूसरे दिन दो बाल्टी निकाला, और दोनों बाल्टी जब लेके चला नीचे से भंडारे के पीछे एक तरफ गौशाला थी, तो रास्ते बहुत खराब थे, पत्थर रोड़े, तो जब उसको ठोकर लगी तो सामने गिरा दोनों बाल्टी लेके, दूध एक बूंद नहीं बचा। अब वो रोता हुआ मुंह बना के आया, बाबा दूध तो सब गिर गया, बाबा के लिए भी एक कप दूध नहीं बचा। पर बहुत प्यार से, बहुत धैर्यता से बाबा ने उसके ऊपर हाथ फेरा, मम्मा को बुलाया, कहा मम्मा सतयुग आ गया। कैसे? अरे देखो दूध की नदियां बह रही है, दूध की नदियां बह रही है। अगर लौकिक में कोई पिता होता तो शायद दो हाथ लगाता कि तुमसे संभाल के नहीं चला गया। उस दिन किसी को चाय दूध में नहीं मिली, दूध बना चाय बना ले, बाबा के लिए नहीं बचा, लेकिन कोई हलचल नहीं। तो धैर्यता से, और उसके अंदर भी इतनी ताकत आ गई, फिर उसके हाथ से कप गिरा टूट गया। बाबा ने बुलाया बच्चू इधर आओ, ये कप कैसे टूटा? कहता बाबा अभी बताता हूँ कैसे टूटा। दूसरा कप ला के गिरा के तोड़ के दिखाया, ऐसे टूटा। उस समय भी बाबा का जो प्यार का रूप था और पॉजिटिव था, बाबा ने कहा ये बच्चा प्रैक्टिकल है, बता के नहीं करके दिखाने वाला है। अभी घर में होते लौकिक पिता क्या करता, एक तो तोड़ा ही था, दूसरा तोड़ दिया, नालायक तुमने। तो प्रैक्टिकल है, तो बाबा ने हर बात में एकदम ड्रामा फिट है, निश्चित है टूटना, निश्चिंत है तो ना हलचल बाबा को, ना नुकसान की फिक्र, और जिसने गलती की उसमें उमंग और भर दिया। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे अपने मानसिक स्थिति को श्रेष्ठ रखो, जब श्रेष्ठ रखेंगे तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, उसका परिणाम भी श्रेष्ठ होगा। दूसरे दिन फिर बाबा ने पूछा, गायों के गोबर का क्या करते हो? कहा, बाबा बाउंड्री के पीछे फेंक देता हूँ। फिर भील लोग ले जाते हैं और अपने इस गोबर से घर लीप लेते हैं। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, गोबर बहुत काम की चीज है, इसको तुम इकट्ठा करो और जो कोयले की राख निकलती है चूरा, उसका लड्डू बनाना है। बोला, बाबा लड्डू कैसे बनेगा? कहा, मैं सिखाऊंगा। तो देखो कितनी छोटी से छोटी जिम्मेदारी किसने त्रिलोकीनाथ जिसमें है, जो सदगति दाता जिस तन में प्रवेश है, जो सारी सृष्टि का, मानव सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा कहा गया, वो कह रहे हैं कि तुम गोबर इकट्ठा करो, लड्डू बनाना मैं बताऊंगा, इससे बड़ी और क्या जिम्मेदारी कोई उठा सकता है? यज्ञ की एक एक चीज की जिम्मेदारी कि गोबर भी बेकार नहीं जाए। इकट्ठा किया, बाबा चलिए, और ऐसे बाबा जा रहे हैं कि आज हम लोग भी कह देंगे, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? लेकिन नहीं, बाबा ने गोबर को कहा मिलाओ, फिर लड्डू बनाना शुरू किया। देखो ऐसे बनाते हैं और उसके हाथ में देते गए और कहा, ऐसे रखो सूखेगा। इतने में कोई वीआईपी आया और गेट पर बोला कि मुझे बाबा का दर्शन करना है, तो पहरे वाले भाई ने भी कह दिया, बाबा तो गौशाला में गए हैं, बड़ी सहजता से, मैं चला जाऊं? हाँ चले जाऊं, वहीं मिल जाएंगे। तो बाबा जब गौशाला में गए तो वो पीआईपी गया और सीधा ही दंडवत बाबा के चरणों में सिर रख दिया। क्यों? उसको बाबा का साकारतन दिखाई नहीं, गोबर का लड्डू दिखाई नहीं, उसको क्या दिखाई दे रहा कि श्री कृष्ण बॉल खेल रहे हैं और उनका सखा कैच कर रहा है, गोबर का लड्डू नहीं दिख रहा है, बाबा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है योग युक्त जो होगा वो बेफिक्र बादशाह होगा। और बाबा हमेशा यही कहते, बच्चे योग युक्त और युक्ति युक्त, तो युक्ति युक्त कार्य करेंगे, योग युक्त रहेंगे तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। कभी ऐसी भी घड़ी आएगी कि चारों तरफ से घिरे हुए होंगे, चाहे प्रकृति से, चाहे समस्याओं से, चाहे बीमारी परेशानी, कुछ भी होगा। जैसे कहते हैं कि एक तरफ शेर है, एक तरफ आग है, एक तरफ खाई है तो एक तरफ पानी है, अब बीच में कहाँ जाएं, किधर जाएं, आग की तरफ जाएं कि पानी की तरफ जाएं, चारों तरफ से घिरे हैं। लेकिन अगर बुद्धि का योग बाबा के पास है और बहुत ही निश्चिंत होके धैर्यता से, तो बाबा हमारी डोर पकड़ के बीच से पार लगा देंगे। लेकिन इतना हमें भरोसा हो बाबा के ऊपर, आज भरोसा हिल जाता है, जरा भी कोई कार्य करते हैं, योग लगाते हैं और नहीं पूरा हो तो कहेंगे बाबा हमारी सुनता ही नहीं है। हम इतना बाबा को याद करते हैं, हमें तो सफलता मिलती नहीं है, पर कितना याद करते हैं, हमने याद किया कहाँ? जैसा कि बताया, याद किया या फरियाद किया, तो योग कहाँ लगाया हमने, संबंध कहाँ निभाया हमने? तो इस तरह से निश्चिंत हो करके, चाहे श्री कृष्ण को भी देखिए तो श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में भी अंतर है। राम ने परेशानी झेल के कार्य किया, भले धैर्यता से किया, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी चेहरे पर, खुशी नहीं थी, और श्री कृष्ण को बालपन से दिखाया कि वो अकासुर बकासुर को हंसते हंसते काम पूरा कर लिया, कोई सेना की जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार से मुझे किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखनी, उम्मीद नहीं रखनी, और एक बल एक शिव बाबा के साथ का और उसकी शक्ति का तो निश्चित होकर के और निश्चिंत होके तो जो कार्य करेंगे उसमें परेशानी चेहरे पर नहीं होगी, ना परेशान होंगे और ना किसी को परेशान करेंगे, बल्कि अपने शान में रह करके हर परेशानी को पार करेंगे। और ये नहीं महसूस होगा कि हमने परेशानी को पार किया है। कोई बड़े से बड़ी घटना भी हो, थोड़ा सा मेरे जीवन का भी है कि जब हमारा एक कार से दुर्घटना हुई थी और डॉक्टर ने 6 मास बेड पे सीधा सोने के लिए बोला, करवट भी नहीं लेना है क्योंकि स्पाइन में 3 जगह क्रैक था, तो हम उठ नहीं पा रहे थे। उठने को तो मना ही था, करवट लेना मना था, और कई डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने कहा देखो हड्डी का काम है जुड़ना, वो जुड़ जाएगी, हिलेंगे डुलेंगे तो टेढ़ी जुड़ेगी, एक दूसरे पे चढ़ के जुड़ेगी, लेकिन जो आपके मसल्स हैं वो सब डैमेज हो गए हैं, वो ठीक नहीं होंगे और पूरी लाइफ पैरालिसिस रहेगा आपको। और भी डॉक्टर्स बुलाए गए, पंचकर्मा वाले आए, कई एक आए जानकार, सबका एक ओपिनियन था कि सब ठीक हो जाएगा, हड्डी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मसल्स नहीं ठीक होंगे। अगर किसी पेशेंट को ये सुना दिया जाए कि पूरी लाइफ विकलांग रहेंगे, पैरालिसिस रहेगा, खड़े नहीं हो पाएंगे, वो कितनी हलचल में होगा। मुझसे लोग कहते थे आपको हलचल नहीं आती है, आपको नहीं लगता कि हम जीवन भर खड़े नहीं हो पाएंगे, तो मेरा जवाब होता था कि नहीं। क्यों? मैंने कहा कि जिसकी सेवा में हम हैं, जिसने हमको चुना है, जिसने हमको स्वीकार किया है, और आज से नहीं किया, इतने वर्षों से किया है, तो अगर किसी के घर में 55 साल का नौकर हो जो आज्ञाकारी हो, ईमानदार हो, वफादार हो, अथक सेवाधारी हो, जी जान लगाने वाला हो, तो अगर उसका नौकर को कुछ हो जाए तो मालिक पूरा जोर लगाएगा उसे ठीक करने के लिए कि ये मेरा पुराना सर्वेंट है। तो अगर उसको ये रहेगा तो हम भी तो उसके है ना, बाबा कहते हैं मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो हम भी तो सर्वेंट हैं बाप के साथ। अगर उसको हमें ठीक करना होगा, उसको ऐसा पुराना कोई चाहिए सेवाधारी, क्योंकि जो नया आएगा उसको ऐसा बनने में टाइम लगेगा, उसको उसे सिखाना बहुत पड़ेगा, मेहनत लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, वो अपने आप मुझे ठीक करेगा, उसको सेवा लेनी है वो ठीक करेगा। तो इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और ऐसा बाबा ने ठीक कर दिया, आज आप सबके सामने है, ना कहीं से विकलांग है, ना कहीं से दीनहीन है, ना कहीं से कमजोर है। जिनकी हड्डी नहीं टूटी होगी, अच्छे खासे होंगे, एक चैलेंज है, गर्व है, उनसे ज्यादा कार्य बाबा हमसे ले लेता है, स्थूल में भी, भाग दौड़ में भी, सफर करने में भी। ये एक बल एक भरोसा, इसको कहेंगे बेफिकर बादशाह, कोई गम नहीं, बेगमपुर के बादशाह। तो एक एक बात में जब हमको इतनी स्थिति हमारी श्रेष्ठ होगी तो निश्चित है कि हमें ये अनुभव होगा, छोटी सी बात में ना घबराएंगे ना हताश होंगे ना परेशान होंगे, और जितना न्यारे होते जाएंगे उतना बाप के प्यारे होंगे। हमारी अपनी भी प्रवृत्ति है, केवल दो बच्चों की, माँ बाप की, परिवार की नहीं, लेकिन बाबा कहते हर ब्राह्मण बच्चे की अपनी प्रवृत्ति है। अपनी प्रवृत्ति माना अपनी कर्म इंद्रियां, उनसे जितना उपराम होंगे, जितना न्यारे होंगे, उतना ही किनारा करते प्यारे बन जाएंगे। और जब बाप के प्यारे बनेंगे तो सबके प्यारे बनेंगे, तो कभी भी ये फिकर नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमारा रखवाला कौन है? बाबा है। हाँ, अगर हम लिप्त होंगे किसमें, वैभवों में, साधनों में, परिवार में, सुख में, इंद्रियों के वशीभूत होंगे, तो स्वाभाविक है बेफिक्र बादशाह नहीं बन पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे सेवा केंद्र खुलते गए, कितने विघ्न आते गए, कितनी बाधाएं आती गई, लेकिन बाबा बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र, कल पहले जो हुआ बच्चे वही है, नथिंग न्यू। आप सबको मालूम नहीं है कि एक बार गोपाष्टमी थी, कलकत्ता में मेला लगा हुआ था, और गोपाष्टमी में अपनी बहनों को स्टॉल लगाने की जगह दी थी, और अपनी परदादी वहां पर थी, निर्मल शांता दादी। बाबा ने कहा बच्चे इतनी बीच में स्टॉल मिला है, सारे चित्र ट्रांसलाइट के बनाओ, वो स्टॉल में रखो, ये साधारण पेंटिंग वाले चित्र नहीं। तो जो भी 10, 12, 15 चित्र थे स्टॉल में, वो सब ट्रांसलाइट के बाबा ने बॉम्बे से प्यार से बनवाया, और मेले की ओपनिंग में पुरी के शंकराचार्य जी मंच पर आए, जैसे देखा कि ब्रह्मा कुमारियों का भी स्टॉल है, सब लाइट के चित्र जल रहे थे ट्रांसलाइट के, उसको गुस्सा आ गया, बोला ये तो समाज की कोढ़ है, इनको कैसे बुला लिया? आज तो सबका बहुत सम्मान होता है, बहुत दृष्टि से देखते हैं, ऊंची दृष्टि से ब्रह्मा कुमारियों में जुड़ने का एक प्राउड रहता है, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और उनकी स्पीच थी कि ये तो समाज की कोढ़ है, इनका तुरंत हटवाइए यहां से। अब वो जो प्रबंधक था वो कैसे निमंत्रण दिया, कैसे हटा दे, फिर उसने कह दिया नहीं, जब तक ये हटेगा नहीं मैं मंच से उतरूंगा नहीं। उस समय कलकत्ता में नक्सलवादियों का बहुत जोर था, बस उसका इतना बोलना, लड़कों ने उठाया डंडा, पटपट सब पीट के तोड़ के रख दिया कांच का। हमारी सब दादियां उस समय वहां पर थी, और बिल्कुल एकाग्र, शांत, निश्चिंत और धैर्यता से सब योगयुक्त खड़े हैं। हाय ये क्या हो रहा, आज हमारी प्रदर्शनी को कोई चित्र फाड़ दे तो बड़ी हलचल मच जाए। तो ये समाचार तो बाबा को मिला, बाबा ने कहा नथिंग न्यू बच्चे, इसमें भी सेवा समाई है, कल्याण है। सेवा क्या था कि अब पब्लिक जो है वो ब्रह्मा कुमारी की तो महिमा करने लगी, और शंकराचार्य की पेपर सहित सबने निंदा किया। एक धर्म गुरु दूसरे धर्म के लिए ऐसा कहे ये गलत है, तोड़वा दिया गलत है। तो दादियों को भी बाबा ने ऐसा बेफिक्र बादशाह बनाया, उस जमाने में इतने पैसे नहीं थे, किस तरह से ट्रांसलाइट के चित्र बनाए गए होंगे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे नथिंग न्यू, कल पहले हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं, और सेवा अपने आप हो गई, सारी पब्लिक, मीडिया सब बोलने लगे, तो ब्रह्मा कुमारियां तो अपने आप पॉपुलर हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते थे बच्चे कभी किसी की निंदा नहीं करो, अगर किसी ने एक लकीर खींची है उसके ऊपर अपने कर्मों से, अपनी स्थिति से बड़ी लकीर खींच दो, अपने आप वो छोटी हो जाएगी। क्रिटिसाइज कभी नहीं करना। एक बार कलकत्ता से एक पेपर निकलता था विश्वामित्र, उसने बहुत गलत डाला था, जितना गलत गंदा शब्द इस्तेमाल कर सकता था किया। जगदीश भाई ने बाबा को बोला, अपने जो सुना है सबने देखा भी होगा कईयों ने, तो जगदीश भाई ने कहा, बाबा ये तो बहुत गलत लिखा है, अगर हम लोग ऐसे दबते रहेंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या कीचड़ उछालते रहेंगे, इसके ऊपर केस करना चाहिए। बाबा ने क्या कहा होगा कि भले करो। बाबा ने कहा, बाप बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता, ये मीडिया वाले भी मेरे ही बच्चे हैं, शिव बाबा के भी हैं तो ब्रह्मा बाबा के भी हैं, सारी जगत पिता तो वही है, तो बाप बच्चों पे केस कैसे करेगा। हाँ, बहुत सुंदर उसको पत्र लिख दो। और बाबा ने बताया क्या पत्र लिखो, कि आपके पेपर का नाम है विश्वामित्र, आप विश्व के मित्र हैं और हमारे परम मित्र हैं, निंदा हमारी जो करे आगे, मित्र हमारा सो। और जब उसको इस तरह से पत्र लिखा, वो कितना पानी पानी हो गया और उसी ने क्षमा मांगी। तो कहते ना, अगर गुड़ देके कोई मरे तो जहर क्यों दिया जाए। तो ना तो किसी को बाबा ने हलचल में आने दिया, जगदीश भाई को भी शांत कर दिया, और बाबा के ऊपर भी कोई असर नहीं। कितनी बदनामी की बातें लिखी थी, अनर्गल बातें। तो इसी तरह से जब हमारी मानसिक स्थिति श्रेष्ठ होगी, बाबा हमारे सामने आदर्श होगा, उसके कदमों पे कदम रख के चलेंगे, तो निश्चित है बेफिक्र बादशाह का अनुभव करेंगे। तीसरी घटना आप सबको नहीं मालूम होगी या किसी ने सुना होगा, कि समय समय कैसे यज्ञ में विघ्न आते गए। हापुड़ का हंगामा किसने सुना है, हाथ उठाएंगे, एक दो तीन। हापुड़ में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ और हमारी शीतू दादी थी वहां पर, और जिस दादी का यज्ञ में सुना होगा कि कराची में जब कोर्ट केस में पेश होना हुआ और अंग्रेज जज था, उसने कहा तुम सब नाबालिग हो, घरों में जाओ, तो सीतू दादी एक ऐसी शेरनी शक्ति थी, छोटी भी थी, आयु कितनी थी दादियों की, जो कुर्सी उठा के इजलास पे जज को फेंक के मारा था। तुम जज हो या हजाम, हमको भगवान का घर छुड़ा के कहते हो लौकी घरों में जाओ, हम नहीं जाएगी। वो जज भी हैरान, आज कोई की हिम्मत है। वो शेरनी शक्ति दादी हमारी वहां थी हापुड़ में। आर्य समाजियों ने बहुत बड़ा घमसान किया, पिकेटिंग कर दी, अंदर किसी भाई बहनों को जाने ना देना, बत्ती कटवा दिया, पानी बंद करा दिया। उस समय के जो लैट्रिन होती थी, कमोड सीट नहीं होती थी, वो तो खुड्डी चूल्हे जैसी होती थी। मेहतर को ऊपर जाना बंद करा दिया, इतना सारा घमसान किया। उन्हीं में से एक आया और कहा कि आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छा घर ढूंढा है, हम ट्रक लेके आए हैं, और आप सामान पैक करिए, हम आपको अच्छी जगह शिफ्ट कर दें, ये लोग मान नहीं रहे, आपका बड़ा घमसान कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिवानों का बुद्धिवान कौन है, बाबा है, उसके बच्चे हैं। तो कहा देखो ऐसा है कि मेरे भाइयों को ले जाओ, नाम बताया, इनको घर दिखा दो, ये पसंद कर लें, फिर हम आपके साथ चलेंगे। तो लेके ही नहीं गए, उनका इरादा था कि इनको सामान सहित तो ट्रक में किसी जंगल में छोड़ जाएंगे, ये विघ्न कम नहीं है। तो बाबा ने बचाया, हमारी छत्र छाया करने वाला बाबा है, इतना जब भरोसा हो जितना दादियों ने किया। फिर बाबा ने कानपुर को समाचार दिया, तब तो टेलीग्राम चलता था, आप लोग जाओ। तो हमारे एक संतराम भाई जी थे, वो गए, वकील थे, और एक पावर हाउस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनको बाबा ने भेजा। और दिल्ली से बाबा ने ब्रजमोहन भाई साहब की माँ को, जिन चाची कहते थे, चाची को भेजा। तो उन्होंने देखा ये आए हैं तीन जने यहाँ पे इतनी सारी भीड़ का सामना करने के लिए, ब्रह्मा कुमारियों के बड़े हितैषी बनके। तो संतराम भाई को तो इतने जोर से थप्पड़ मारा है कि मुंह ही घूम गया उनका, अचानक कोई कसके मारे। और जो इंजीनियर थे मुक्ता प्रसाद जी, उनको काला मुंह करके, जूते का हार पहना के, गधे बिठा के पूरे हापुड़ में घुमाया। आज कोई भाई के साथ ऐसा कोई करे किसी आश्रम पे, वो क्लास में जाना ही छोड़ देंगे, भगवान को भी छोड़ देंगे। छोटी छोटी बात में, फीलिंग में आकर के मान सान न मिला तब तो रूठ ही जाते हैं। लेकिन हंसते हंसते इंजीनियर साहब इतने हंस रहे थे जैसे कोई कारून का खजाना मिला है। और अपना बाबा कहते हैं तुम चेहरे से, चलन से सबको साक्षात्कार कराओ। सबको लगता था क्या इनको मिला है जो आज ये इतने प्रसन्न है, जूते का हार पहन के गधे पे बैठ करके। इसको कहते हैं एक बल, एक भरोसा, बेफिकर बादशाह। चाची जी एकदम शिव शक्ति बन के खड़ी है। सपेरा बुलाया और चाची जी के गले में सांपों की माला लटकवा दी। ये तो महिला है, अभी डर के भाग जाएंगी। लेकिन वो साक्षात्कार मूरत अचल अडोल, कोई चेहरे पे सिकन नहीं। अब तो वो बेचारे हार गए, अब क्या करें, उनका तो बल चला नहीं। तो उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे सीबी गुप्ता, यानी चंद्रभान गुप्ता। जो पुराने होंगे बुजुर्ग उनको नाम मालूम होगा। और कद काठी के ऐसे ही थे जैसे अन्ना हजारे, और खादी टोपी पहनते थे। मेरे पास अभी भी उनकी फोटो है। तो चीफ मिनिस्टर को समझौता करने जाना पड़ा। फिर गंगे दादी को बाबा ने कहा मुख्यमंत्री जा रहा तो आप जाओ। गंगे दादी गई तो पूछा कि आपका लोग विरोध क्यों करते हैं, और सारी हापुड़ की जनता बैठी है, देखें आज चीफ मिनिस्टर क्या फैसला देते हैं। तो उन्होंने पूछा आपका जनता क्यों विरोध करती है। दादी ने कहा दो बात है, एक देखिए कितने निर्भय होके, कितना विरोध हो रहा है, कितना शांत मुहूर्त, जैसे कुछ है ही नहीं। तो गंगे दादी ने कहा दो कारण है, एक कारण तो ये है कि बापूजी ने संकल्प किया था कि भारत को राम राज्य बनाएंगे, भारत को आजाद तो कर दिया पर राम राज्य नहीं बन पाया। तो विश्व के बापूजी, हम उनकी संतान है, वो हमारे राष्ट्र के पिता हैं, तो भी हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उनके कार्य को संपन्न करें पिता के नाते। राष्ट्रपिता हैं, हमारे भी पिता हैं, लेकिन भारत को आजाद किस आधार पर किया था, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के आधार पर। तो राम राज्य किस आधार पे बनेगा, जरूर यही दो हमको भी लेना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। तो राम राज्य के लिए हम लोगों ने दो ही व्रत लिया है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। हमारे पास भी कोई तोप तलवार नहीं है। तो ये दो शक्तियां, दो गुण को धारण किया। बापूजी अकेला चला, काफिला बढ़ता गया, हम भी चले, हमारा पिताश्री चले, उनके पीछे हम लोग चले, हमारे पीछे दुनिया चलने को तैयार होती है, स्वइच्छा, जबरदस्ती नहीं। तो जब वो चल रहे हैं तो लोग विरोध करते हैं। दूसरी बात, हमको सत्य ज्ञान देने का ऑर्डर है, तो बापूजी ने सत्य भी अपनाया था, तो सत्य क्या देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी तो बताएंगे। तो जितना यहाँ पाखंड है, भगवान के नाम पे कर्मकांड पाखंड चल रहा है, तो हम सत्य बात बताते हैं, क्योंकि उससे देश का उद्धार नहीं हुआ। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ना राम राज जैसी खुशी आई, ना शांति आई, ना संपत्ति आई, ना कष्ट निवारण हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, वो सत्यता के बल से होगा। चीफ मिनिस्टर ने उसी समय अपना स्टेटमेंट दिया, अरे ऐसी बहनों की तो आवश्यकता है भारत को, जनता को, सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। पासा ही पलट गया। तो जितने सब बैठे थे धरना मार के, वो सब उल्टे पांव चले गए, ऐसे गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब। तो बाबा कैसे अपने बच्चों का कार्य सहयोगी बन के कराते, लेकिन मदद क्यों मिली? क्योंकि बाबा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित कर दिया था दादियों को। इतना साल जो तपाया था वो तप बल था, योग का बल था, त्याग का बल था, इतने बड़े विघ्न चुटकियों में खत्म हो गए। और जो पेपर में फर्स्ट पेज पे आया फ्रंट में चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट, तो सब सेंटर वालों ने, जितने थोड़े सेंटर थे, उसकी कटिंग करके फ्रेम करके और जा करके सामने सेंटर में लगाया जैसे कोई सर्टिफिकेट है। उसके बाद मजाल है कि कोई चू करे। तो ये देखी जाती है कि इतने बड़े विघ्न शायद हम लोगों के आगे, आप लोगों के आगे नहीं आए होंगे, ना सामाजिक ना पारिवारिक, किसी प्रकार से नहीं। ऐसे विघ्नों में भी बाबा ने सबको यही पाठ पढ़ाया था। तो बाबा को और दादियों को देख करके हम बहुत कुछ छोटे से संगम में सीख सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर ड्रामा पे निश्चय है तो दैवी परिवार पे भी निश्चय करो। बाप में निश्चय तो सबको 100% है। और एक घटना आती है, बाबा ने कहा बच्चे पहाड़ों पे लोग छुट्टियों में जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं और फ्री माइंड से जाते हैं, तो वहां तुम कोई एग्जीबिशन लगाओ, वहां बहुत प्यार से देखेंगे सुनेंगे। तो नैनीताल में एग्जीबिशन लगाई गई, तो दिल्ली के आर्य समाज के जो हेड थे राम गोपाल साल वाले, तो नैनीताल दिल्ली बगल में ही है, दूर नहीं कोई ज्यादा, वो जाके बहुत घमसान किया, अपने एग्जीबिशन के सामने माइक लगाया और गालियां देना ब्रह्मा कुमारी को जितना दे सकते थे, और एक उल्टी पुल्टी किताब भी छपाई थी वो बांटना, सब कुछ हुआ। तो उस दिनों में, गर्मियों के दिनों में, जो गवर्नर होते थे वो पहाड़ों पे जाते थे, तो यूपी के जो राज्यपाल जी थे वो वहां गए हुए थे नैनीताल। उन लोगों ने गवर्नर को कहा ब्रह्मा कुमारियों को हटाओ। जैसे आपको पता यहाँ भी जब राज्यपाल चिन्ना रेड्डी ने सुखधाम के बगल वाली जगह दी थी पार्क बनाने की, तो आबू वालों ने भी काले झंडे दिखाए थे, वहां काफी विरोध किया राम गोपाल साल वाले ने, गवर्नर को जाके बोला। तो गवर्नर ने फिर बुलाया, कहा दो तुम आओ और दो ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आएंगे। तो शांतामणि दादी और गंगे दादी को गवर्नर ने बिठाया, तो कहा पहले दिन से पूछ लो इनको हमसे क्या परेशानी है, मैं दो मिनट और टाइम लेती हूँ। तो कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियां भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानती हैं, अपने दादा को भगवान मानती हैं, और कोई आपत्ति नहीं। फिर दादी से पूछा कि आपको सर्वव्यापी ना मानने में क्या फायदे हैं? तो दादी ने शॉर्ट में सब बता दिया कि ज्ञान भक्ति वैराग्य कुछ भी नहीं होगा अगर सर्वव्यापी है तो, क्या भगवान भगवान के साथ ऐसा करता है, जितना बहुत सिद्ध कर दिया। तो क्या भगवान की उपस्थिति में सारे अधर्म पाप अत्याचार हो रहे हैं? फिर यदा यदा धर्मस्य गिलानी भगवान ने क्यों बोला है, या जब जब हो धर्म की यानी, इसका मतलब भगवान यहाँ नहीं है, आते हैं। तो भगवान को सर्वव्यापी मानने से तो हमारी लाइन कट जाती है, सप्लाई लाइन तो हमें प्राप्ति नहीं है, और परम धाम निवासी मानने से हमारी तार जुड़ी रहती, हमको शक्ति मिलती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो उन्होंने भी यही फैसला किया। और जितना वो दिन भर थे तो अपने जो भाई लोग थे, थोड़ी हंसी की बात है, तो वो कहते थे जय शिव शंभू राधे तंबू। तो मल्ली ताल में अपनी एग्जीबिशन तो लगी थी धर्मशाला के हॉल में, वो माइक लगाए थे मैदान में। शाम को 6 बजे ऐसी काली आंधी आई तो उनके माइक का, टेंट का, तंबू का पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो भाई लोग बड़े खुश कि हम कहते थे ना देखो जय श्री शंभू राधे तंबू, वो तंबू 2 घंटे में पता नहीं 2 मिनट में कहाँ गया। तो गवर्नर ने उधर मना किया, इधर प्रकृति ने साथ दिया। तो जब अपने मन में कोई हलचल नहीं होती है, एक रस स्थिति होती है, बाबा का हाथ और साथ है, तो चलन चेहरे स्थिति सबसे साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से अगर हमारी स्थिति ऐसी है और निश्चय है, विश्वास है, और सब तो कहेंगे भरोसा है कि हमारी नैया पार होनी है, चाहे परिवार की हो, चाहे व्यापार की बात हो, जो होगा कल पहले मुआफिक होगा, नथिंग न्यू, तो कभी भी हलचल नहीं होगी, बेफिकर बादशाह का बाप समान अनुभव करेंगे। ओम शांति।
आती सोच तेरे एहसान की, खान की आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा।